हमेशा हमेशा के लिए। रश्मि तो अब खुद को रोक नहीं पाई और खिलखिलाकर जोर से हंस पड़ी। वहीं बाकी सब भी उन दोनों को देखकर जोरों से ठहाके लगाकर हंसने लगे थे। अब सबको खुद पे हंसता हुआ देखकर ध्रुवाहन ने तुरंत एक दूसरे को भोली सी सूरत बनाकर देखा, क्योंकि अब दोनों को ही समझ में आ चुका था कि वो थोड़ी देर पहले कितना चाइल्डिश बिहेव कर रहे थे। अब आगे और कितनी बुरी तरह से वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, जबकि बात भी कुछ नहीं थी। तभी आस्था ने एक नज़र आहान ध्रुव को देखा और अगले ही पल एकदम से हंसते हुए बोली, आप लोगों को इतना झगड़ने की क्या ज़रूरत थी? अंश बड़ा होकर क्या बनेगा क्या नहीं, ये तो मैंने भी अभी नहीं सोचा। ये सुनते ही उन दोनों के कान खड़े हो गए और वे बारी बारी से आस्था को देखकर बोले, हाँ रियली भाभी, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तभी आहान तुरंत आस्था के पास आया और उसकी बाजू को पकड़कर बोला, भाभी मेरी प्यारी भाभी, मुझे पता है आप भी चाहती हो कि अंश बड़ा होकर बॉक्सर बने, और आप तो मेरी भाभी हैं तो आप मेरी बात से सहमत होंगी। आस्था ने आहान को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तुरंत ही दूसरी साइड से ध्रुव आस्था के पास आकर खड़ा हो गया और दूसरी तरफ से आस्था की बाजू पकड़कर एकदम से बोला, आस्था भाभी आप तो खुद डॉक्टर बनना चाहती है ना, आपका बहुत बड़ा सपना है डॉक्टर बनने का, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अंश बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। आस्था ने ध्रुव और आहान को देखा, होंठ से कोड़े और कुछ नहीं बोली। कहाँ तो वे लोग अब उन लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी कर रहे थे, कहाँ वे लोग अभी एक अलग ही टॉपिक को लेकर झगड़ने लगे थे। तभी अरमान ने गहरी नज़रों से आहान और ध्रुव को देखा, क्योंकि दोनों ने आस्था की एक एक बाजू को पकड़ रखा था। ये बात अरमान भला कैसे बर्दाश्त कर सकता था, वो तो अपनी प्यारी खूबसूरत बीवी पर किसी की नज़रें बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तो दोनों ने आस्था का हाथ पकड़ा हुआ था। अब अरमान उन्हें खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा। अब अपने शरीर पर किसी की नज़रें महसूस होते ही आहान और ध्रुव की नज़र जैसे ही अरमान पर पड़ी, वैसे ही उन्होंने बारी बारी से अपने हाथों को घूर कर देखा, जिन हाथों से उन्होंने आस्था का हाथ पकड़ रखा था। अब दोनों की डर के मारे खिक्खी बन गई और दोनों ने अपने मुंह में अपने हाथ दबा लिए थे। फिर आहान ध्रुव के कानों में धीरे से फुसफुसाया, भाई अंश डॉक्टर बने ना बने, बॉक्सर बने या ना बने, लेकिन अगर हमने आस्था भाभी का हाथ नहीं छोड़ा तो हम दोनों कंकाल ज़रूर बन जाएंगे, इसलिए भाभी का हाथ छोड़, चल भाग यहाँ से। अब जैसे ही दोनों को इस बात का एहसास हुआ, दोनों दुम दबाकर वहां से भाग निकले थे। अब उन दोनों को यूं भागते देखकर सब लोग अचानक चौंक गए, लेकिन वंशिका, रौनक और साथ ही साथ राधिका, रश्मि, नानीमा सभी का हंस हंसकर बुरा हाल हो चुका था। वहीं आकाश और सुमित समझ चुके थे कि वे दोनों इस तरह से डरकर क्यों भाग गए, फिर वो दोनों भी उनकी हरकतों पर मंद मंद मुस्कुरा दिए थे। तभी अचानक अविनाश तुरंत ही वहां आया और आस्था को याद दिलाते हुए बोला, आस्था हम ठीक एक घंटे बाद यहां से निकलेंगे, ठीक है? मैंने पायलट को भी बोल दिया है, वो सिंघानिया मेंशन की छत के ऊपर ही चॉपर लेकर आ जाएगा, क्योंकि सिंघानिया मेंशन बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जहां पर आसानी से एक नहीं एक साथ दो चॉपर आ सकते थे। इतना सुनकर सभी थोड़ा इमोशनल हो गए और उसके बाद राधिका, रश्मि, वंशिका, रौनक के चेहरे थोड़ी मायूसी सी छा गई, लेकिन वे ये भी जानते थे कि आस्था का जाना कितना ज़रूरी है। फिलहाल अरमान ये सुनकर तुरंत अपने कमरे की ओर चल पड़ा। वहीं आस्था ने अगले ही पल एक नज़र चुपके से बाकी सबकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए नानीमा की ओर देख कर बोली, नानीमा हम अभी आते हैं, तब तक आप हमारा खाने वाला सामान पैक कर दीजिएगा। ये बोलकर आस्था मुस्कुराते हुए सीधा अरमान के पास उसके कमरे में चली गई थी। वहां आकर उसने देखा कि अरमान बालकनी की साइड मुंह करके खड़ा हुआ था। आस्था ने उसके पास जाकर उसे पीछे से गले से लगा लिया था और उसे चिपक कर उसकी कमर पर सिर रखकर मुस्कुराई और आहिस्ता से बोली, हम आपको बहुत याद करेंगे, ठीक है? और हाँ, आप अपना पूरा ख्याल रखेंगे और हर रोज़ सोने से पहले और उठने के बाद सबसे पहले हमें फ़ोन करेंगे और वीडियो कॉल करेंगे, और जिस दिन आपका फ़ोन या वीडियो कॉल नहीं आया तो समझ लीजिए कि हम तुरंत ही आपके पास लौट कर आ जाएंगे। जैसे ही आस्था ने ये कहा, वैसे ही अरमान थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और फटाक से वापस घूमकर उसने आस्था को अपने चौड़े सीने से लगा लिया था। अब कसकर सीने से लगाने के बाद उसका सिर बड़े ही प्यार से सहलाने लगा और उसके बालों को चूमते हुए बोला, आप सोच भी नहीं सकती हैं कि आपको खुद से दूर करते वक्त मुझे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन फिलहाल आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए आपको इस तरह से ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता हूँ, जबकि आपने मेरी ज़िंदगी में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही भरती हैं, और उन खुशियों के बदले मैं भला इतना ज़्यादा स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ। आस्था खामोशी से अरमान को गले से लगाए हुए उसकी खुशबू महसूस कर रही थी और अरमान के किसी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसके दिल और दिमाग में अजीब सी हलचल मची हुई थी और अरमान के सीने से लगे हुए वो बिल्कुल आराम से बोली, पता नहीं अरमान जी, हम जा तो रहे हैं दादाजी से मिलने के लिए, लेकिन ना चाहते हुए भी एक अजीब सा डर महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमें आपसे दूर कर रहा है। पता नहीं, जब भी ये ख्याल हमें आता है हमें कुछ अजीब सा डर सताने लगता है। जैसे ही आस्था ने ये कहा, वैसे ही अचानक अरमान की मूवमेंट उसकी कमर पर रुकी और वो आस्था को सीने से लगाए उसकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। फिलहाल कुछ सोचकर आस्था अरमान से हटकर खड़ी हुई और उसकी ओर देखकर एकदम से हंसकर बोली, अब चाहे वजह कुछ भी हो, अब तो हम ऑस्ट्रेलिया जाकर ही रहेंगे, और हाँ, हमारे एब्सेंट में आप अपना अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, किसी को भी बेवजह नहीं मारेंगे, किसी को भी नहीं सताएंगे और अपना खाना टाइम से खाएंगे। और हाँ, एक और बात है, जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक आप शेविंग भी नहीं करवाएंगे, ठीक है? अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, वैसे ही अरमान एकदम से चौंक गया और हैरानी से आस्था की ओर देखने लगा। तब तक आप शेविंग नहीं करवाएंगे, ये लाइन याद आते ही अरमान मुंह बिचकाकर आस्था को सवालिया नजरों से देखने लगा। अब अरमान की आंखों में अपने लिए सवाल देखकर आस्था बात को हंसी में टालते हुए बोली, हम नहीं चाहते कि आप शेविंग वगैरह करके हैंडसम वगैरह दिखाई दे और लड़कियां आपके पीछे भिन भिन आते हुए आए, क्योंकि कुछ दिनों के लिए हम यहाँ नहीं होंगे ना आप पर निगरानी करने के लिए। अब आस्था के मुंह से ये जवाब सुनते ही अरमान का दिल किया कि वो जोरों से हंस पड़े, लेकिन वो खुलकर हंस नहीं पाया, केवल हल्का सा मुस्कुरा कर रह गया। फिर आस्था के माथे को चूमकर मीठी आवाज में बोला, किसी की इतनी औकात नहीं है और ना ही किसी की हिम्मत है कि वो अरमान सिंघानिया की जिंदगी में आ सके। अरमान सिंघानिया ऑलरेडी अपनी जिंदगी आपके नाम कर चुका है, हमेशा हमेशा के लिए, मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया। ये बोलते हुए अरमान ने आस्था को गले से लगा लिया था और कुछ पल रुक कर बोला, एक और बात, मैंने अंश के लिए कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी है, तो आप उन प्रॉपर्टी के कागज जो बेड पर पड़े हैं उन पर साइन कर दीजिएगा, उसके बाद मैं उन्हें देख लूंगा। ये सुनकर आस्था थोड़ी चौंकी, लेकिन उसे लगा कि अंश के लिए तो आए दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ खरीदता ही रहता है, क्योंकि जब से अंश हुआ था तब से ध्रुव, आकाश, सुमित सभी कुछ ना कुछ उसके लिए खरीदते रहते थे। आहन ने तो एक से बढ़कर एक स्पोर्ट्स कार खरीद लिए थे, एक से एक महंगी गाड़ियां, बाइक्स वहां मौजूद थीं।
वहीं आकाश ने भी अलग अलग तरीकों से कई चीजें अंश के लिए खरीदी थीं। सुमित का भी कुछ ऐसा ही हाल था, इसीलिए आस्था को किसी भी तरह का कोई ज्यादा शक नहीं हुआ और उसने फटाफट से बिना देखे सभी कागजों पर सिग्नेचर कर दिए थे। फिलहाल वो मुस्कुराते हुए अरमान को देख के बोली, अब हम चलते हैं, हमें बाकी सबसे भी मिलना है, दादाजी और पापा जी से भी आशीर्वाद लेना है, ठीक है? इतना बोलकर आस्था ने एक बार फिर कसकर अरमान को गले से लगा लिया था। फिर कुछ पल बाद वो बाहर की ओर जाने लगी, लेकिन अरमान उन कागजों को देखते हुए कुछ अजीब ढंग से मुस्कुराया। वहीं दूसरी ओर, एक लड़की के साथ अपनी पूरी तरह से मनमर्जियां करने के बाद ब्लैक डेविल इस वक्त अपने असिस्टेंट रॉकी के सामने खड़ा हुआ था। रॉकी उस वक्त थरथराते हुए कांप रहा था, क्योंकि जब तक सम्राट को लड़की के साथ अपनी फन एक्टिविटी पूरी करे तब तक उसे विवेक सिंघानिया की खबर चाहिए थी। लेकिन अरमान ने तो विवेक को इस तरह से अंडरग्राउंड करवाया था कि कोई भी उसके बारे में कोई खबर नहीं निकाल पाया था। क्योंकि अब उसने ब्लैक डेविल का काम नहीं किया था तो रॉकी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। फिलहाल सम्राट ने रॉकी को दो बर्फ की सिल्लियों पर खड़ा करके रखा हुआ था और ऊपर से उसके ऊपर मसाले जला रखे थे। नीचे से बर्फ की तरह ठंडा होता जा रहा था। इस वक्त उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन ब्लैक डेविल को उस पर इतना सा भी रहम नहीं आया था और वो लगातार उसकी ओर देखकर बोले जा रहा था, शुरू से लेकर आज तक तुम मेरे साथ हो और यकीन मानो तुम हमेशा मेरे लिए वफादार रहे हो और तुमने हमेशा मेरा सारा काम किया है, लेकिन अब तुम्हें अचानक से क्या हुआ, तुमने काम ही करना बंद कर दिया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जब मैंने बोला मुझे विवेक सिंघानिया की खबर चाहिए तो मतलब चाहिए थी, तुम्हें मुझे विवेक सिंघानिया की खबर देनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो मुझे उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे पाए। अब तुम ही बताओ माय डियर रॉकी, मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? भले ही इस वक्त सम्राट बिल्कुल नॉर्मली बात कर रहा था, लेकिन उसके बात करने के तरीके भर से ही रॉकी के जिस्म में कंपकपी सी दौड़ गई थी। इतना डर उसे बर्फ से नहीं लग रहा था जितना डर उसे इस वक्त अपने सामने खड़े हुए सम्राट ठाकुर से लग रहा था। सम्राट को देखने के बाद उसकी पैंट पूरी तरह से गीली हो चुकी थी और अब सम्राट ने जैसे ही रॉकी की ओर देखा, अगले ही पल उसने एक तिरछी सी मुस्कुराहट दी थी और गहरी आवाज में बोला, ठीक है आ जाओ। ये बोलकर अपने हाथ इस तरह से साफ करते हुए सम्राट वापस से अपने शानदार हॉल में जा बैठा था। इस वक्त उसके हाथ में एक सिगार मौजूद थी और लगातार वो उसके कश लगाए जा रहा था। फिलहाल अचानक ही वो सिगार पीता पीता जोरदार तरीके से जानदार हंसी हंसने लगा था। अब सम्राट को इस तरह से बेवजह यूं ही हंसते हुए देखकर उसके जितने भी बॉडीगार्ड थे जो कि उसके विला में मौजूद थे, जो कि उसके डाक विला में मौजूद थे, वो सभी थर थर कांपने लगे थे, क्योंकि सम्राट का यूं ही बेवजह हंसना इस बात की गवाही दे रहा था कि न जाने कितने लोगों के खून की नदियां बहेंगी। फिलहाल हंसने के तुरंत बाद उसने अपना चेहरा एकदम इमोशनलेस कर लिया और एकदम चिल्लाया, अरमान अरमान माय डियर फ्रेंड अरमान, आखिरकार तुम उसके देख को अंडरग्राउंड करने में कामयाब हो गए, वरना रॉकी, जिसे बाल में से खाल निकालने की उसकी ताकत और हिम्मत दोनों है, वो भी उस विवेक को ढूंढ नहीं पाया। लेकिन मानना पड़ेगा, वाकई मेरे दोस्त, तूने विवेक सिंघानिया को कितनी चालाकी से गायब करवा ही दिया, लेकिन फिलहाल तू उस तूफान से कैसे बचेगा अरमान, जो तूफान धीरे धीरे तेरी ओर बढ़ रहा है। ये बोलते हुए सम्राट फिर से जोरों से हंसने लगा था। वहीं दूसरी ओर, अब जल्द ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थीं। अंश एक बार फिर घूम फिरकर अरमान की गोद में आ चुका था और आंखों ही आंखों में अरमान ने उसे इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि उसे पूरी तरह से अपनी माँ का ध्यान रखना है। वहीं आस्था उदास मन से सबसे गले मिलने के बाद फिर सभी के सामने अरमान को भी गले से लगा लेती है। कुछ पल के लिए सभी दूसरी तरफ मुंह फेरकर खड़े हो गए थे, लेकिन आस्था ने अरमान को कसकर गले से लगाकर रोनी से आवाज में कहा, हम आपको बहुत याद करेंगे और हाँ, दादाजी से मिलने के बाद हम जल्दी लौट आएंगे। अगर आपका कभी दिल करे हम लोगों से मिलने का तो आप तुरंत वहां आ जाना, ठीक है? आस्था ने जैसे ही मासूमियत से ये कहा, वैसे ही अरमान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई और उसने उसके माथे को चूम लिया। कुछ देर बाद नानी माँ ने भी आगे बढ़कर आस्था को गले से लगाया और दबी हुई और धीमी आवाज में बोली, गोरी बिटिया अपना बहुत ध्यान रखना। आपको क्या लगता है क्या चल रहा था अरमान के दिमाग में और आगे क्या होगा आस्था और अरमान की इस कहानी में?